تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہد جستجوے یہ بلندی ہے.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. رسالہ ضیاء درود السلام، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ آپ نے پیپر دیے اور آج آخری پیپر تھا. ایک مدنی منی نے بھی پیپر دیے تھے، عمر اس کی 17 سال. آخری پیپر جب دے دیا، آخری پیپر دے کر گھر میں آئی، اس نے کھانا کھانے کے لیے چولہا روشن کیا، پائپ نکل گیا ربڑ کا، اس سے وہ جھلس گئی. 8 دن سول اسپتال میں رہی اور پھر بیچاری دم توڑ گئی. جامعات المدینہ ہی کی طالبہ تھی، غالباً مولا کی تھی. اس کا آخری پیپر جامعات المدینہ کا پورا ہوا، قبر کے امتحان کی ترکیب بن گئی. اس لیے یہ دنیا میں جو بھی امتحانات ہوتے ہیں نا، اس میں قبر اور قیامت کے امتحان کی یاد ہے. جیسے یہ امتحان، اب یہ امتحان جتنا بے قرار کرے، اتنی قبر و آخرت کے امتحان کی اس میں زیادہ یاد ہے. کہ جب دنیا کا امتحان اتنا بے قرار کر رہا ہے، تو قبر کا امتحان کیسا ہوگا؟ اور اس میں تو کتنی بے قراری ہونی چاہیے. اچھا، دنیا کے امتحان کے نامعلوم سوالات کی تیاری، پھر امکانی سوالات، سائڈیں اس کی، اطراف، اکناف، ان سب کی تیاریاں، اور قبر کے معلوم سوالات، کوئی تیاری کی توجہ ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو جامعت المدینہ کے امتحانات میں بھی پاس کرے اعلی نمبروں سے، اور قبر کے امتحان میں بھی ہم سب کو اعلی درجے سے پاس فرمائے، قیامت کے امتحان میں بھی پاس فرمائے اعلیٰ درجے. بلکہ قیامت کا امتحان ہمارے ساتھ نہ ہی ہو، کہ امتحان ہوا تو پھر تیاری، پتہ ہے تیاری کا کیسے ہوتی ہے، تقریباً سبھی کو، ہر مسلمان کو پتہ ہوتا ہے، لیکن تیاری ہے نہیں. گھر کا ماحول دنیا کا امتحان کی تیاری پر زور دے گا. خود جہاں یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہاں کا ماحول بھی اسی کی طرف، کیا اساتذہ، کیا ناظمین، کیا ٹیچرز، کیا لیکچرار، ساری یعنی سارا جو ہے نا میڈیا، پیپر میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سبھی امتحان میں اسی دنیاوی امتحان کی تیاری کو فوکس کرتے ہیں. قبر کے امتحان کی توجہ، یہ تو مدنی ماحول کی برکت ہے کہ اس طرح کی ہم گفتگو کر رہے ہیں، ورنہ اس طرح کی گفتگو بھی کہاں ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا. معاذ اللہ من چلے یہاں تک بول جائیں گے، या जो सबके साथ होगा अपने साथ होगा, नऊज़ बिल्ला। तो इस तरह मतलब है कि हर मामले में हमें आखिरत का पहलू तो निकालना चाहिए जहां तक हो सके, गिजाओं में, मशरूबात में, लिबास में, बिछोने में, इन कमरों में, रास्तों में, हर जगह मतलब है ना कि बंदा गौर करता चला जाना तो आखिरत की याद के पहलू निकाले जा सकते हैं। बिजली चली जाए तो आखिरत का पहलू निकलता है कब्र का अंधेरा, फिर बिजली आ जाए तो आखिरत का पहलू कब्र की रोशनी काश नूर मुस्तफा के सदके हो जाती, कि जिस तरह ये बिजली चली गई थोड़ी देर बंद रही फिर बल्ब रोशन हो गए तो दिल में एक फरहत महसूस होती है। तो कब्र के अंधेरे में कितनी वहशत होती है, इसमें अगर नूर मुस्तफा का उजाला हो जाए तब फरहत कैसी होगी, इसका तो कोई अल्फाज में बयान कर ही नहीं सकता। लेकिन तवज्जो हमारी है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बिजली चली जाती हुई तो लोग तो मुझे लगता है कि देने वाले गालियां भी देते होंगे, हालांकि ये बिजली का जाना भी हमारे लिए कब्र के अंधेरे की याद दिलाता है कि हम किसी तरह कब्र के अंधेरे को याद करके, अब याद करेंगे ना इन अंधेरों को तो उजाले का सामान होगा, कि ये यादें भी अल्लाह की रजा के लिए हो तो कारे सवाब है। माहौल चारों तरफ नहीं है इस तरह की, मतलब सोहबतें नहीं है इस तरह के, बोलता बहुत ही कम, मतलब कोई ऐसी बातें करता है शाजो नादर। मैं जब पहली जमात में था प्राइमरी स्कूल में, मैं छोटा सा था, इतनी समझ नहीं आती थी, लेकिन हमारे इस्लामियत का जो उस्ताद थे बेचारे, अब तो वो हयात होंगे नहीं, तो खैर वो हमारे उस्ताद जो थे, उन्होंने एक बार कुछ दोजख का नक्शा खींचा और अजाबाद का तस्करा किया था, सब डर लगा था, और यानी कि जैसे कि वो दिन आज का दिन उस तरह की उसकी बातें याद आती हैं कभी कभी, यानी कि वो कैसे उस्ताद थे यार, लेकिन अब तो पता नहीं, तो चुटकुले और गाने और डांस और क्या क्या स्कूल में होता होगा, अल्लाह खैर करे। खैर हमारे अभी माहौल को अच्छा नहीं था, उस वक्त भी माहौल बिगड़ा हुआ ही था, लेकिन एक उस्ताद ने ऐसा भी किया, इस्लामियात वो पढ़ाते थे हमको, बच्चों को इस तरह उन्होंने वो दर्स बहुत अच्छा दर्स दिया था, अल्लाह इनकी मगफरत करे। अब तो जिंदा होना उसका बाजार तो कोई चांस नहीं है, उस वक्त भी इनके सफेद बाल थे यहां से। तो ये बात भी जो मैं कर रहा हूं कोई 60 साल तो पुरानी होगी, जाहिर है 5-7 साल का ही पहली जमात, 5-6 साल का ही होगा मेरे, 4-5 साल का। ये दिल सख्त हो गया सर, दिल की सख्ती के असबाब इतने सारे हमने जमा कर लिए हैं कि वो बस असर पड़ता नहीं है ना, दिल की सख्ती के इलाज की तरफ भी हम लोग उसकी कोशिश नहीं करते। बारगाह रिसालत में किसी ने अर्ज की दिल की सख्ती की शिकायत की, तो फरमाया कि यतीम के सर पे हाथ फेरो और मिस्कीनों को खाना खिलाओ, तो ना मिस्कीनों को खाना तो क्या खिलाएंगे, मुंह से निवाला छीनने की तरकीब होती है अपनी, तो ना मिलकर जब खाते हैं हमारा नहीं होता तब भी हमें इसार की तौफीक कमी मिलती है, तो हम क्या जेब से मिस्कीन को खाना खिलाएंगे। यतीम यतीम तो धुतकारा जाता है, तो दिल की सख्ती के बहुत सारे असबाब, तो ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है, कहका तो बात का स्टेप है, तो कहके से क्या होता होगा, ये सब भी कमोबेश लगा रहे हैं, अब कोई हजारों लाखों में नहीं लगाता तो वो अशाजो कल मादूम, तकरीबन सब भी इसी में मशगूल है। तो अच्छा, इसी तरह पेट भर के खाने से दिल सख्त होता है। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया कि पेट भरकर खाने से और ज्यादा बोलने से दिल सख्त होता है। अब हम में से कौन है यार जो पेट भर के खाना नहीं खाता, बहुत बुरी हालत है, तो डट के खाने से, पेट भर के खाने से भी दिल सख्त होता है, और ज्यादा बोलने से, तो ज्यादा बोलने का भी तो हाल जो है कितना बुरा हाल है हमारा, न सिर्फ पेट भरता है न कोई, ऐसा भी नहीं है कि चलो पेट भर जाता है या हमको कुव्वत आ जाती है, हिम्मत आ जाती है ज्यादा बोलने से, लेकिन हम कितना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं कि बस इंतजार क्या जरूरत, बेजरूरत जरूरत, जरूरत के टाइम पर भी आदमी बोले, लेकिन आमतौर पे गैर जरूरी बातें हमारे मिजाज का हिस्सा है, हम बच ही नहीं पा रहे। बहरहाल ये के जब दिल नर्म होगा तो ही ये सब बातें समझ में आएंगी, ये रिवायतें हमको डराएंगी, डर लगेगा, रिक्कत आएगी, आखिरत की सोच बढ़ेगी, बनेगी, बढ़ेगी, खुशी और खुशू नमाजों में आएगा, सब होगा, लेकिन दिल सख्त हो गया, पत्थर से मैं सख्त जिसको बोलते हैं ना। صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد।
हमारे जब इम्तिहानात करीब आते हैं तो हम अपने असातिज़े किराम और अपने वालिदैन और मज़ारत औलिया पर भी जाके दुआ करते हैं, तो क्या हमें आखिरत के इम्तिहान के लिए भी अपने असातिज़े किराम और अपने माँ बाप और मज़ारत औलिया पर जब हम जाएं तो उसे किस तरह दुआ करनी चाहिए?
ये तो है कि वो तो पहले ही मैंने कहा ना कि इस दुनिया में जो इम्तिहान आते हैं इसका बड़ा इम्प्रेशन होता है हम पर और एक रोब होता है, ये इसके लिए भाग दौड़ तैयारियां, फिर दम दुरूद दुआ तावीज औराद, लेकिन आखिरत के इम्तिहान के लिए फिर अब वो बात नहीं है, तो वाकई इसके लिए भी दुआएं करवानी चाहिए। सरकार आलात रहमतुल्लाह तआला अलैह तो मगफिरत की दुआ करवाते थे, मलफूजात में आपने अगर पढ़ा हो कि एक मजसूब के पास तशरीफ ले गए तो मजसूब ने कहा तुम फुलाम काम के लिए आए हो, तो बोला नहीं मैं तो हुजूर बस सिर्फ मगफिरत की दुआ करवाने आया हूं। इसी तरह मीना शरीफ की मशहूर मस्जिद, मस्जिद खैफ, बहुत कदीम मस्जिद है, अब तो खैर वो इसकी काफी तोसी हो गई है, जदीद है, वरना वहाँ इतनी कदीम है ये कि उसमें 70 अंबिया किराम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं। अब तो कुछ अलामत कुछ भी नहीं है मजार की, सब फर्श नमाजें होती है, तो उस मस्जिद में आप तशरीफ ले गए तो उस वक्त कोई ऐसा वक्त था कि नमाजों का वक्त नहीं था, कोई भी नहीं था वहां, एक साहब थे वो पहली सफ में सर झुकाकर मुराकिब थे, उस शहद की मक्खियों की बिनबिनाट किसी आवाज आ रही थी, तो आलादत को वो हदीस शरीफ याद आ गई, अहलुल्लाह जब अल्लाह के नेक बंदे औलिया किराम जिक्र करते हैं तो इनके सीनों से ऐसी आवाज बुलंद होती है शहद की मक्खियों की बिनबिनाट किसी, तो आप दबे कदम उसकी तरफ बढ़े कि मैं मगफिरत की दुआ करवाऊंगा, तो उन्होंने खुद ही हाथ उठा दिए और मगफिरत की दुआ इनके लिए कर दी, और मतलब पीछे मुड़ के देखा नहीं उन्होंने, अहलुल्लाह से पता चल गया, तो हालात भी समझदार थे, वली रवली मिशन आसत वली वली को पहचानता है, समझ गया कि इनको मेरा मकसद पता चल गया, मैं दुआ कराने के गया था मगफिरत की, तो इन्होंने मैंने दुआ कर दी, अब जाओ ये इशारा समझे इसका, तो आप फिर पलट गए मिले बगैर उससे, दुआए मगफिरत को आलादत बड़ी तरजीह देते थे। हमारे यहाँ कोई ऐसा लगे कि इसकी दुआ कबूल हो जाएगी तो हम आमतौर पे मगफिरत की दुआ का बोलेंगे तो मरी हुई दादी के लिए, फौतशुदा अपने अजीजों के लिए, अपने रोजी में बरकत, इम्तिहान में पास हो जाऊं, नौकरी लग जाए, फुलां हो जाए, ये होता है हमारे लिए हमारे यहाँ, हालांकि अल्लाहुम्मा अग़फिर लि हज्जिना दुआए तो जनाजे की दुआ है उसमें या अल्लाह हमारे जिंदों की मगफिरत फरमा ये पहले है, अल्लाहुम्मा अग़फिर लि हय्यिना व मय्यितिना और हमारे मुर्दों की, तो मुर्दों का नंबर बाद में है लेकिन इस वक्त ये मैं कई बार बयान करता हूँ, लेकिन बस वो इन्हें इतना ये आम है कि सिर्फ मुर्दों के लिए दुआएं मगफरत के, कभी कोई कहता भी है ना कि मेरे वालिद साहब के लिए मगफरत की दुआ कर दें, तो मैं समझ में यही आता है कि इनके वालिद फोत हो गए। फिर बाद सरात भी हो जाती है कि वालिद साहब के लिए दुआएं मगफरत कर दें, अम्मी बीमार है इनके लिए सेहत की दुआ कर दें, और सरात नहीं तो मजीद यानी कि वो मजबूत हो जाता है कि ये वालिद फोत हो गए, पता भी चल जाता है बातों से। तो हालांकि जिंदों को भी मगफिरत की दुआ की आ जाते हैं, हम सभी को आ जाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
8 साल इल्म दीन हासिल करने के बाद भी क्या मजीद इल्म दीन हासिल करने की हाजत है, और ये क्यों हाजत रहती है?
सूफिया किराम का कौल है कि इल्म हासिल करो महद से लहद तक। महद माने पिंगोड़ा, बच्चे को जिसमें झुलाते झूला, इससे लेकर कब्र तक। तो बहरहाल इल्म का समुन्दर इतना गहरा है कि इसकी गहराई को कोई पा नहीं सकता, ठीक है ना। तो इसलिए वो सारी उम्र भी इल्म हासिल करेंगे फिर भी पूरा इल्म हासिल तो होना नहीं है, तो इसलिए वो हर दम इल्म हासिल करता रहे। इल्म को खर्च करेंगे तो खर्च करने से घटता नहीं है बल्कि बढ़ता है, तो इसको पढ़ाते रहें तो ये बढ़ेगा। जिससे बन पड़े वो तदरीस करे, मजीद आगे अपने तखस्सुस फिल फिक, मैं इसको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, इसलिए कि इल्म फिक ये सबसे अफजल इल्म है सारे उलूम में, इल्म फिक ये अफजल है। कि चलो मुफ्ती ना भी बन सके कोई बात नहीं, अपने फर्ज उलूम पक्के हो जाएंगे और अपने बहुत सारे मसाइल जो है ना सीखने को मिल जाएंगे, अपने इबादत के नकाइस अगर हुए तो वो सामने आ जाएंगे, फवाइद ही फवाइद है। मुफ्ती कहलवाने के लिए तो पढ़ना भी नहीं चाहिए, फिर छोले बेचे आप। अल्लाह की रिजा के लिए तखस्सुस फिल फिक में अगर दाखिला मिलता है तो जरूर लें, और दूसरे जो अब सिलसिले चले हैं साल भर में मुफ्ती का सना दिया जो भी कहीं अगर मिल जाती है ऐसों के उसमें आप ना जाएं। इसलिए कि मैं भी जब इसमें डीप गया हूं ना, तो मुझे यानी कि पहले तो ये शिकायतें लोग करते थे कि हमारे यहाँ बहुत मियार सख्त है और मुफ्ती को बन नहीं सकता, और तो अब मैं 112% मुत्तफिक हूँ इस अंदाज से कि हमारी मजलिस वो मुफ्ती का टाइटल नहीं दे रही, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ देखता हूँ, भले उस एक अरसे से फतवानवीसी कर रहे होते हैं लेकिन वो जहन में वो गुत्थियां सुलझाने वाली सलाहियत ही नहीं है, तो मुफ्ती का टाइटल इसको कैसे दिया जाए। तो इसलिए ये ख्वाब छोड़कर दूसरी कहीं चले गए आप, मुफ्ती का आपको टाइटल मिल गया लेकिन इंदल्ला अगर वो सलाहियत नहीं है आप में मुफ्ती की, तो आप तो फंसेंगे ना यार। तो इसलिए मतलब इस लालच में ना पड़े, तो इस तरह तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं दीन का नक्शा बिगड़ जाएगा, बस का नाम मुफ्ती के साथ इन चल रहा होता है। अफसोस होता है मुझे यार कि ये क्यों ऐसा करते हैं यार। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। हाँ तो तखस्सुस फिल हदीस ये भी करना चाहिए, जिसको जिस तरफ रुझान हो दिलचस्पी हो और मालूमात हो उसको पहले से, तो वो कुछ ना कुछ इल्म हासिल करने के अपने जो सिलसिले हैं उसको जारी रखिए आप, और फिर पर्सनल स्टडी इसमें इसकी रूह है। अगर आप निजी मुतालागा नहीं करेंगे तो उस्ताद जितना पढ़ाएगा ठीक है पढ़ाएगा, लेकिन निजी मुतालागा इसमें बहुत जरूरी है कि बगैर आप कामयाब नहीं होंगे। मुतालागा 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 ऐसों को देखेंगे ना तो ये आप ऐसों को फजूल बातों में नहीं देखेंगे। हमारे गपशप के जो बनते हैं ना चक्कर बैठकें इसमें ही नहीं मिलेंगे, अगर ये कहीं ऐसी जगह होंगे भी ना तो ये किताब निकालेंगे तो पढ़ना शुरू कर देंगे। मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी फारूक किताब ये भी होती रिसाले रखते थे, ये पढ़ना शुरू कर देते थे हम। मतलब मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ में इज्तिमा था तो मुफ्ती फारूक भी मेरे साथ थे वहां जहां हम ठहरे थे, तो उन्होंने वहां पर शायद पेट का कुफले मदीना नया नया ये बाब छपा था, तो वो एक ही दिन में वहां मतलब इन्होंने पढ़ लिया पूरा। हमने मक्के शरीफ में देखा इनको, मक्के शरीफ में इतना इनको मुतासिर हुआ, मैंने देखा कि हम लोग जब मिलके बैठते थे तो जब तिलावत का दौरान यह होता था, तिलावत की भी तरकीब होती थी, तिलावत के दौरान में तो आगे बैठ जाते थे, तिलावत करने सुनने में ये हो जाते थे मशगूल। फिर जब हम वैसे बैठते थे ना तो हमारे साथ नहीं बैठते थे, ये कमरे में जाकर ये अपनी तिलावत और ये जो भी आमतौर पर तिलावत करते रहते थे ये करते थे। अच्छा, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का बिल्कुल नया नया सिलसिला चला हुआ था। तो एक और भी इस्ताई भाई साथ थे हमारे, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से उनका ताल्लुक था, उनको काफी शिकायत थी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के मैनेजमेंट से। तो मैंने कहा कि ठीक है, अपने मुफ्ती फारूक भी वहीं होते उसी दारुल इफ्ता में, हम मिलके मशवरा कर लेते तीनों फिर आगे बढ़े। तो हमने तीनों ने मिलकर एक मतलब हमने मदनी मशवरा किया। अब मैं अगर कहें ना तो मैं कसम भी खा सकता हूं, मुझे इतना याद है कि ये पूरा मदनी मशवरा जितनी देर भी चला ना, इस अल्लाह के वली ने एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकाला मुफ्ती फारूक ने। वो जो शिकायतों के पुलंदे खोल रहे थे दूसरे साईं भाई, वो खोल रहे थे, ये अल्लाह के बंदे ना हाँ बोल रहे थे ना बोल रहे थे, ये बस हमारे साथ चल रहे थे बस। आखिर तक कुछ नहीं बोला मैं, अब के तेरे को ये हुआ कि यार शिकायत यार इन्हीं को मैनेजमेंट से, इनको क्यों नहीं यार, ये भी तो एक ही साथ ही है, तो इसका मतलब इनको कोई गलत फहमिया लगता हो गई है, वरना ये मुफ्ती फारूक भी बोलते कि हाँ ये सही कह रहे हैं। एक बार भी नहीं बोला, मैं सही मुझ पर असर पड़ा इनका, सही इंप्रेशन पड़ा कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने मशवरा करके इनको मरकजी मस्जिद शूरा में ले लिया। इतने शरीफ आदमी, इतने खामोश तबीयत, तहज्जुद गुजार, जमात के पाबंद, फिर वो तरीकत की सोच भी मदीना मदीना इनके हर तरह से मतलब है, देखे हमारा समझो कि बेहतरीन हीरा बहुत जल्दी हमसे बिछड़ गया, वरना ये आज होते ना तो मस्जिद तरक्की होती, इल्म तो बढ़ता ही रहता तजर्बात से, तो यार ये कहां के कहां निकल जाते, मालिक की मर्जी, अल्लाह इनको गरी कर रहमत फरमाए। तो इसलिए वो आप मुताला करते रहेंगे, जहन नसीब कुफले मदीना नसीब होगा, और ये मजाक मस्करियों की और इस तरह की फजूल बैठकें बहुत होती हैं, इसमें ना पढ़ते। अच्छा, सोशल मीडिया ने मसरूफ किया आपको, मेरा गुमान गालिब है अगर ये होते सोशल मीडिया को टच भी ना करते, ये शायद पूछते कि यार ये कैसे होता है, ये कैसी शादी है, अपने को पूछते कैसे थे, इन्होंने स्कूटर इसके पास दिए, स्कूटर बेच दी, बोला यार स्कूटर में तो आंखों का कुफले मदीना लग ही नहीं सकता, न चलाते तो सामने देख कर ही चलाना पड़ेगा, अब वो औरत जा रही है मर्द जा रहा है जो भी है, आंखें तो उसे संभाल ही नहीं सकते ना, वो देखेंगे नहीं देखेंगे तो फिर तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो नारायण बांसना बजे बांसरी स्कूटर बेच दी और पैदल आते जाते थे पैदाने मदीना, तदरीस भी शायद फरमाते थे, हाँ तदरीस फरमाते थे, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत कंजूर ईमान में थे, शहीद मस्जिद में इमामत करते थे, वो पैसे कटवाते रहते थे कटौती, बहुत माशाल्लाह प्यारे आदमी थे, इनको शायद तनख्वाह बढ़ाने के ऊपर की तो बोला मुझे जरूर पूरा हो जाता है, बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अरे वो मिसाली इस्ताई भाई थे ये, कि मत पूछो बात। तो आप में से कोई अल्लाह करे इनका नेमल बदल मिल जाए मुझे यार, ऐसा शरीफ और बेसरर और दावत इस्लामी का भी पक्का टन्ना टन, मदनी काफले मदनी नामवत जो बोलो वो, आज ये होते तो शायद दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का रंग भी कुछ और होता, कि अभी उन दिनों इतना हमारी वो उठान स्लो थी, अब उठान काफी हो गई, कई दारुल इफ्ता अहले सुन्नत वालों को मदनी काफलों का पाबंद कर देते शायद, लेकिन मालिक की मर्जी। तो अल्लाह करे आप में से भी कोई ऐसे उठते हैं, थे बाढ़ वाले सर, हम लोग आमतौर पर बातों नहीं बोलते, ये बाहमल थे, बोलते कुछ नहीं थे, इनका किरदार बोलता था कि ये कैसे हैं, अपने कारनामे कभी भी नहीं सुनाते थे। एक बार वो अमारात में जब आए थे तो वो वाक्य याद आ गया, तो अपने बा जमात मगरिब और सुन्नतें और अवाबीन पढ़ी, यासीन शरीफ की पूरी, इसमें तिलावत हुई, तो मुझे कहा कि इसमें क्या हिकमत है। तो मैंने इनको बताया कि वो अहिया उल उलूम है ना, कि बेवजू तिलावत एक लफ्ज की 10 ने किया, बावजू 25 ने किया, नमाज में बैठे बैठे पढ़े तो एक अर्ज की 50 ने किया, और अगर खड़े खड़े पढ़े तो 100 ने किया एक अर्ज के। तो कहा कि ठीक है, अब मैं भी इस तरह करूंगा, नमाज में पढ़ूंगा। तिलावत जो करते थे ना, कुरान करीम की तो मंजिल इनकी तो बहुत पक्की थी, ये शायद रोज की एक मंजिल पढ़ते थे। इनको अगर तर्जमा भी कहे ना, ये तर्जमा इसकी आयत कौन सी है, तो ये आयत बता देते थे कुरानी कंप्यूटर, हाँ इसे पढ़ते थे। तो उन दिनों तो एक मंजिल ये इन्होंने बताया, पूछा होगा ना कि तुमको इतना कैसे याद है, तो बोला मैं रोज की एक मंजिल अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इस तरह के थे। तो ये यासीन शरीफ वाली इनकी माशाल्लाह क्वालिटी की। तो ये असल किरदार, तो मालूमात तो माशाल्लाह हमारे पास, आप भी मालूमात तो रखते हैं, को कम ज्यादा होती है, लेकिन साथ में ऐसा किरदार हो, ऐसा ठंडा मिजाज हो, जाड़ना गुस्सा करना ये कुछ ना हो, ये है बहुत मुश्किल कि एक बंदे में बहुत सारी खूबियां यकजा हो जाए। एक खूबी होगी तो दूसरी खामी घुस जाएगी, तो परेशान करेगी। आप कुछ फरमाते?
मैं ये अर्ज कर रहा था बाबा हमें भी बना देना आप मुफ्ती फारूक, अच्छी नजर डाल दे हम पे।
मैं बना दूं, मेरे को बनाना आता हो तो मैं ना बन जाऊं यार।
निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी।
शुक्र करम का भी अदा हो नहीं सकता। दूसरा मिसरा जवाब दीजिए।
दिल तुम पे सिदा, जान हसन तुम पे सिदा हो।
जवाब दुरुस्त है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
जो इस्लामी भाई दर्स निजामी के बाद ना तखसूस फिल्फिक तखसूस हदीस वगैरह नहीं कर रहे या तदरीस वगैरह नहीं कर रहे, तो उन इस्लामी भाइयों को क्या सूरत हाल करनी चाहिए?
ये तो अब बेचारे नौकरी करेंगे, कारोबार करेंगे, कुछ तो करेंगे, तो ये इल्म है बस खर्च करने से बढ़ता है, खर्च नहीं करते इसको तो फिर ये भूलैया खत्म हो जाएगा। वो नाम के आगे मदनी लिखेंगे आप तो फिर शर्म आए, याद ही कुछ नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। तो इसलिए इसी शोबे से वाबस्ता रहेंगे तो आपका इल्म जो है ये बचेगा, वरना बचना मुश्किल है। तो कोई ऐसा करें कि बस वो इस शोभा ना छोड़े, कुछ ना कुछ इसी फील्ड में आप अपने जगह बना ले और इसी में गुजारा करें। वो पैसों के चक्कर में भी पास भागते होंगे, ज्यादा आमदनियां तो होती हैं, और यार उस अफसर को इतनी तनख्वाह और हमको इतनी तनख्वाह, तो भाई तो अगर आपको आप उसकी जगह होते और वो आपकी जगह होता, क्या ये जमीर गवारा करेगा? जागता होगा कि नहीं, अब कभी भी नहीं करेगा। यहाँ फाके करके भी अगर इल्मे दीन मिलता हो तो महंगा नहीं है। तो जो इल्मे दीन से महरूम है उनकी रीस करना, इनको इतनी आमदनी है, तो दुनिया में इसलिए थोड़ी आए कि हम आमदनियां करें, अब माल कमाए। आपको इस फील्ड में मिलेंगे, वाकई बासलाहियत होते हैं, बहुत रकम कमा सकते हैं लेकिन नहीं कमाते, इसी लाइन में रहते हैं, यार ये लाइन छोड़नी नहीं है। आपने उनका नाम सुना होगा दारुल उलूम अमजदिया के मुफ्ती जफर अली नुमानी, ये थे खाते पीते लेकिन इसी लाइन में थे, ये लाइन में थे और वो दारुल उलूम अमजदिया में आला हज़रत के उर्स में हर साल मेरी हाजिरी होती थी, एक दौर था मेरा। तो एक बार ये इन्होंने इंकिशाफ किया, मुझे भी पता नहीं था, बोला अल्हम्दुलिल्लाह हर साल मुझे ये सआदत मिलती रही कि आला हज़रत के उर्स के इखराजात में बर्दाश्त करता रहा, अब ये कुछ लोग उठ गए हम भी हिस्सा डालेंगे। तो इस तरह मैं इतना मुतासिर हुआ, ये रोने लगे, रो पड़े कि ये सआदत मेरे पास रहनी चाहिए, आला हज़रत के उर्स में ये इन्होंने कहा था। तो ऐसा जज्बा हो ना और फील्ड के वाबस्ता रहे तो ये तो बड़ी बात है, ऐसा कम होता है। फिर आप निकले इस फील्ड से तो फिर निकले तो गएगा हमसे इधर उधर निकल गए। आखिरी उम्र तक ये दारुल उलूम अमजदिया से वाबस्ता रहे, अब भी वहीं सोए हुए, मजार भी इनका वही है। सदर शरीया रहमतुल्लाह ताला अलैह की याद में ये बना था दारुल उलूम अमजदिया। صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد।
बाबा दूसरा सवाल ये है कि जो दर्शन निजामी से फारिग शुदा इस्लामी भाई हैं, तो उनकी दूसरों की तरबियत के हवाले से कोई शरई जिम्मेदारी बनती है?
अमर बिल मारूफ तो वैसे सभी को करना ही है, हर फील्ड में हरेक को करना है, तो अमर बिल मारूफ तो करता ही रहे दूसरों को। बल्कि आप अगर अब यही काम ले ना, आपका लाइन है कि आप दूसरों को दर्शन निजामी के लिए तैयार करें, तो इससे बहुत मिलेंगे जिनको आप तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह आपके लिए भी इंशाल्लाह सदका जारिया की सूरतें निकल सकती हैं। और मजीद मदनी कामों में तो रहे आप, अवाम देखो तो आप लोग अगर बयानात करेंगे और रहनुमाई करेंगे अवाम की तो फायदा ज्यादा होगा। अब जो दूसरे साई भाई हैं वो भी बेचारे बयान करते हैं, एक से एक भागदौड़ करते हैं, आपको भी ये उलमा ने या नहीं भेजा होगा, ये अवाम ही होगा जिन्होंने भेजा होगा आपको जहन बनाकर, ये बयान करेंगे और आप करेंगे, दोनों में फर्क पड़ेगा कि आपका जो बयान होगा इंशाल्लाह ये उनसे बेहतर होगा शरई एतबार से। तो आपको बयान करने ये नहीं मेहमान की तरह कि आपको बुलाया जाए और आपने बयान फरमा दिया और फिर मेहमान की तरह आप तशरीफ ले गए, लोगों ने दस बोसे की निकल गए, ऐसा नहीं। तो आपको याद है खुशकिस्मत ये है कि इलियास ने हमको टाइम दे दिया है, मैं टोकता था यार यूं क्यों बोलते हो यार, मुझे अलग क्यों कर रहे हो, तो मैं मेहमान हूं, मैंने टाइम दे दिया, मेरे को एहसान किया है टाइम देकर, मेरी अपनी दावत ऐसा लगी है, इसके लिए कोई टाइम देकर के एहसान जताऊंगा तो नहीं, मेरी दावत ऐसा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मजे की बात यह है कि दौरे हदीस शरीफ वालों को मैंने टाइम दिया या टाइम लिया क्या कहलाएगा? एक तरह से तो टाइम लिया, अगर जो किसी ने मुझे तरगीब दी लेकिन सोती पैगाम तो मैंने दिया ना आपको, क्या जाओ और खाने की हिर्स भी दिलाई, खाना भी खाओ करके बनाई ना। तो ये तो दावत इस्लामी इसमें बड़ी खुशनसीबी है, मैं टाइम दे दिया और ये जुमले मेरी अपनी जात के लिए तो मुझे नहीं मुनासिब लगते। बाप ने घर में अगर दाखिल हुआ तो बाप ने क्या टाइम दिया, आपने घर में ही तो आया है। तो आप भी ऐसे बन जाए कि आपको बुलाएं, मान दें, आपसे टाइम लें, तो आप मतलब वो टाइम दें। पिछली बार शबे बरात में वे बयान मैंने छोड़ रखे हैं, पहले बहुत बयान किए, बहुत किए, आप लोगों ने तो सुने ही क्या होंगे, मतलब बल्कि पहले बयान मैं ही करता था, दूसरे इधर उधर से मुबल्लिक छापता था, मैं ही बयान करता था, इधर उधर जाता था, दौरे करता था।
खज्जी ग्राउंड में बाबा आपका जो बयान होता था
जी,
क्या बात,
जवानी थी यार और आवाज में गरज थी, अब गरज नहीं यार, اب وہ نہیں, اب وہ آواز میں خڑخڑاہٹ آ گئی.
سالانہ اجتماع کا آخری بیان اثر والا جو آپ کر رہے تھے,
اس میں آواز بہت گرج ہوتی تھی. اب خیر اب عمر کے ساتھ ساتھ تو ہونا ہی ہے. یہ اس وقت کا میں سنتا ہوں تو مجھے خود حسرت ہوتی ہے یار, کسی یار ترکیب تھی, کاش یہ مجھے احساس پیدا ہوتا کہ میں نے زیادہ بیانات کیوں نہیں کیے, میں نے وقت گزار دیا, سستیوں میں گزار دیا. آپ کے پاس موقع ہے, اب میں بیان کرنا چاہتا ہوں, ہمت نہیں بڑھتی. اب وہ میری وہ عادت نہیں ہے, فقیر دو دن سے تھکا ہوا ہے, آٹھ دن سے بیان کر رہا ہے, یہ الحمدللہ اس طرح کی عادتیں میری ہیں نہیں. یہ عام طور پہ نعت خوان کرتے ہیں, عام طور پہ فلاں کا فون آ گیا تو میں حاضر ہو گیا, سرکار کی محفل ہے کیسے انکار کرتا. وہ تو مجھے کوئی غریب بلاتا تو پتا چلتا کہ میں کیسے حاضر ہوتا, وہ بات کی بات ہے. تو اس طرح مطلب یہ ایسے بھی ہیں, سب ایسے نہیں ہوتے, لیکن ایسا عام طور پہ ہوتا ہے کہ وہ جیسے آنے والا احسان جتاتا ہے, او کہ میں یوں آیا اور یوں اڑا اور یوں سویا اور یوں جاگا اور یہ کھایا, اتنی تھکن, نیند نہیں, فلاں نہیں. اس میں تھوڑا سا وقت دیتے ہیں, اور یہ پتہ نہیں لوگوں سے ہمدردیاں لیتے ہیں یا خدا جانے کیا نیت ہوتی ہے. یہ عادتیں آپ مہربانی کر کے مت ڈالنا. اگر کوئی مقرر تھکا ہوا ہوتا ہوگا, میں شاید ان سے زیادہ تھکا ہوا ہوتا ہوں گا. میری تو عمر ایسی ہے کہ یہ تھکن ہی تھکن والی عمر ہے, حقیقت یہ ہے. اس عمر پہ پہنچے گا تو آپ کو پتا چلے گا, روا روا آپ تھکا ہوا محسوس کریں گے. وہ یہ ایسی تھکن ہے کہ پھر بندہ اس کا بھی عادی ہو جاتا ہے. تو اچھا, پھر بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بالکل ہمت جواب دے جاتی ہے, ایسی تھکن لگتی ہے. تو یہ عمر کا تقاضا ہے, گاڑی چلتی رہتی ہے الحمدللہ, اللہ بس کسی کا محتاج نہ کرے. مگر یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جتا نہیں رہا ہوں. مسئلہ ہے تو مائک پر آتے ہی جتانے کی جو عادت ہے نا, یہ نہیں ٹھیک. مطلب آپ ایسی عادت ڈالنا نہیں, کوئی ایسی بات نہیں کرے تو اس کو ایزا پہنچانا نہیں ہے, اس کی غیبتیں بھی نہیں کرنا. یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ جیسے کہ اگر میں اسی انداز کی بات کروں گا نا تو آٹومیٹک آپ نے یہ انداز اپنانا ہے, آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا, بیڑ چال ہے. تو یہ سنتے سنتے یہ عادتیں پڑ گئی. ایک نعت خوان بولتا ہے تو پھر دوسرا بھی بولے گا, تیسرا بھی بولے گا. یہ ایک عادت بیچاروں کی باتوں کی پڑی بھی ہوتی ہے, اور یہ جو بولتے ہیں ساری وہ سفر نامہ بیان, سفر کے داستان بیان کریں گے, ادھر گاڑی رکی, ادھر پنکچر ہو گیا, ادھر یہ ہو گیا, بڑی مشکل سے پہنچا ہوں, وغیرہ وغیرہ. آپ ایسا نہیں کرنا, بیان کرنا, کلام پڑھنا اللہ کی رضا کے لیے. مجھے تو اس میں بھی تھوڑا شک پڑ رہا ہے کہ میں نے تو کوئی اور کلام سوچا تھا, لیکن فرمائش آئی ہے تو میں یہ کلام پڑھ رہا ہوں. اس میں بھی مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کوئی نمبر بڑھانے والا انداز تو نہیں ہے, تو میری ویلیو کتنی تو فرمائش کرتے ہیں آپ فلاں کلام پڑھیں, کیا یہ کہ نہیں ہوتا ہے کیا فرمائش. یہ اس میں شک پڑ رہا ہے مجھے, کنفرم تو میں کوئی بات نہیں کرتا, کسی کے نیت پر حملے نہیں کرتا, لیکن یہ سب ہو رہا ہے. اس میں اگر کوئی آپ کو لگے احتیاط کا مدنی پھول تو اس کو قبول کر لے کہ یہ بھی بولنے کی کیا ضرورت ہے. اگر یہ اس کی دل جو ہی مقصود ہے کہ بھائی مجھے فرمائش کی اس لیے میں پڑھ رہا ہوں, تو وہ اس نیت پر ہو سکتا ثواب ملے کہ فرمائش کرنے والے کو یوں لگے کہ انہوں نے میری فرمائش کو اہمیت دی. یہ نیت کا محل تو بن رہا ہے. تہبا کے سوا سب باغ پامال فنا ہوں گے, کون پورا کرے گا شعر؟ کتاب ملے گی مگر ترنم کے ساتھ. اچھا چلو, تحت اللفظ بولتے اس طرح بغیر ترنم کے سنا دیا. تہبا کے سوا سب باغ پامال فنا ہوں گے,
دیکھو گے چمن والو جو جب عہد خزاں آیا.
سبحان اللہ, جواب درست ہے. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
طلاق